परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मांगने से ज्यादा मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा
मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की और हमने यह देखा कि किस प्रकार दानियल प्रार्थना कर रहा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। इस समय जब हम फिर से दानियेल नबी की पुस्तक से सीखना चाहते हैं तो आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारे श्रोताओं के जीवन से हर एक प्रकार की बुराइयां, व्यर्थ की बातें, चिंताओं को आप दूर करें। हाँ प्रभु, हम विनती करते हैं अपने उन श्रोता मित्रों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और चिंतित हैं, परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी स्पर्श करें, छुएं, चंगाई दें, उन्हें तंदुरुस्ती दें ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। आज के अध्ययन पर हम फिर से आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम दानियेल से प्रार्थना करना सीख रहे थे कि हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के निकट आना है और अपने पापों का अंगीकार स्पष्ट रूप से करना है, ना कि सामान्यतः कह दें हमारे पाप क्षमा कर, परंतु हमें अपने शब्दों को, अपने पापों को सही रीति से रखना है। हमारी प्रार्थना उद्देश्य गर्भित हो, अर्थात उद्देश्य पूर्ण हो। हमें कष्ट उठाकर प्रार्थना करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को कोड़े मारे और प्रार्थना करें, जैसे दानियेल उपवास रखकर प्रार्थना करता था। हमारे निवेदन प्रभावी हो तो परमेश्वर तुरंत ही हमें उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आवश्यक नहीं कि हम हर एक आवश्यकता के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन करें। हमारे प्रभु यीशु ने भी सदा एकांत में ही प्रार्थना की थी और तब हम देखते हैं कि उसने अपने शिष्यों को भी सिखाया कि जब वे प्रार्थना करें तो एकांत में जाकर, कमरे के अंदर जाकर प्रार्थना करें। जो परमेश्वर गुप्त में सारी बातों को देखता है, आपकी और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर भी देता है। क्यों ना आज हम भी इसी प्रकार की प्रार्थनाओं को करें। तो मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दानियेल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। लिखा है, हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इसराइली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। लिखा है सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर। मेरे प्रियो, इसराइल तितर बितर था, परंतु एक भी गोत्र खोया नहीं था। कुछ गोत्र तो दानियेल के साथ बेबीलोन में थे, परंतु कुछ दूर कहीं और थे। दानियेल जानता था कि वे कहाँ हैं। उसने तो यह नहीं कहा क्या समीप क्या खोए हुए, उसने कहा देश देश में तीतर बीतर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। यहाँ पर स्पष्ट है कि उनके विश्वासघात के कारण परमेश्वर ने उन्हें तीतर बीतर कर दिया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कठिनाइयां आती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समीप आएं, अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि हम कहां पर गलत हैं और उस बात को स्मरण कर परमेश्वर की ओर फिर जाएं। दानियेल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। मेरे प्रियो, अब तक हमने देखा कि दानियल इसराइल के पाप के उपरांत भी परमेश्वर की उनके साथ भलाई को गिन रहा है, उसकी धार्मिकता और उनकी लज्जा का वर्णन कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया। वे दंड के योग्य ही थे। उन्हें बंधुआई में भेजना परमेश्वर की धार्मिकता का प्रदर्शन था। परमेश्वर सही था और वे गलत थे। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को छिपाना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं दुर्बल हूं, परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था, ऐसा कहकर यदि आप उसके पास आते हैं, आप अपने पाप का दोष परमेश्वर पर डाल देते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर को ही सोचना था, वह आप पर कठोर रहा है। मेरे प्रियो, हम दंड पाते हैं तो अपने ही कर्मों के कारण। इसलिए हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करना आवश्यक है। कुछ लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि गलत हम हैं, परमेश्वर नहीं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है कि मिट्टी कुम्हार से कुछ नहीं कह सकते कि उसे किस प्रकार का आकार दे। मेरे प्रियो, हम मिट्टी हैं और परमेश्वर कुम्हार है, हम उस पर दोष नहीं लगा सकते। यदि आज हम गलत करते हैं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर उसकी रचना है। परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमें दानियल का स्वभाव अपनाना है। परमेश्वर हमारा त्याग नहीं करेगा, परंतु जब तक हम उसकी दया के योग्य अपने आप को ना कर दें और बहाने बनाना ना छोड़ दें, वह हमारे पक्ष में कुछ नहीं करेगा। हम दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 से 18 पद में आगे पढ़ते हैं। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। मेरे मित्रों, यह दानियल की प्रार्थना और निवेदन थे। वह स्मरण करता है कि परमेश्वर ने इसराइल को कैसे मिस्र से निकाला था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी धार्मिकता के कारण मिस्र से निकाला था, न कि उनकी धार्मिकता के कारण। उनकी मुक्ति में परमेश्वर की अपनी इच्छा पूरी होती थी, न कि इसराइलियों की। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनमें जो देखा वह केवल उनका कराहना था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उनके दुख को देखकर उन पर तरस खाया। अतः दानियल परमेश्वर से निवेदन करता है कि वह अपनी धार्मिकता के द्वारा उन्हें इस बार बेबीलोन से छुड़ा ले। परमेश्वर जब हम पर दया दर्शाता है तब वह अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप का पूरा दंड चुका दिया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह अब ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि दानियल की उत्तेजना भरी विनती। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। मेरे मित्रों, यह दानियल की विनती की चरम सीमा थी। वह परमेश्वर से विनती करता है कि वह अपने कारण और अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके प्रार्थना सुने और उत्तर दे। इसराइल में कुछ भी भलाई नहीं थी कि वह इस योग्य था, परंतु इसलिए कि वह अपने साथियों के साथ अपने पापों का अंगीकार करता है। उसकी प्रार्थना का मुख्य कारण था कि परमेश्वर का नाम खराब हो रहा था, उसकी महिमा धूमिल हो रही थी। उसकी विनती का मुख्य कारण यही था। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि दानियल अभी भी प्रार्थना ही कर रहा है। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इसराइली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। लिखा है, मैं प्रार्थना करता और अपने पाप का अंगीकार करता हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, दानियल कहता है अपने पाप। दानियल स्वीकार करता है कि वह भी एक पापी मनुष्य है, अर्थात वह पापी है। यह एक अति रोचक बात है कि बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दानियल ने पाप किया। यहां तक कि उसके बैरी जब उसमें दोष खोज रहे थे तब उन्हें उसमें कोई भी दोष नहीं मिला। निश्चय ही उन्होंने कुछ भी पलटने से चूक नहीं की थी। मैं सदा ही कहता आया हूं कि 10 आज्ञाओं का पालन करने से उद्धार नहीं है। यदि कोई किसी को जानता हो जिसका उद्धार 10 आज्ञाओं को मानने से हुआ है तो कृपया मुझे आप अवश्य बता दें। एक बार मैं किसी प्रार्थना सभा में ऐसी ही चुनौती दे रहा था कि सभा के बाद एक बाइबल सीखने वाले विद्यार्थी ने आकर मुझसे कहा कि पुराने नियम में एक मनुष्य है जिसने कभी पाप नहीं किया था, वह है दानियल। मैंने कहा कि वह उचित कहता है क्योंकि दानियल के लिए कहीं नहीं लिखा गया कि उसने कभी पाप किया। तब मैंने उसे बाइबल का यह पद दिखाया जिसमें वह स्वयं कहता है कि उसने पाप किया है। अतः आपको मानना होगा कि दानियल ने पाप किया था, अन्यथा वह झूठा कहलाएगा। मेरे प्रियो, अब वह विद्यार्थी अस्वस्थ था कि बाइबल सही कहती है। लिखा है रोमियो के पत्र 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब यदि आप जानना चाहें कि दानियल का वह पाप क्या है, तो यह हमारा काम नहीं है, क्योंकि बाइबल भी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहती है। अतः दानियल भी पापी था, आज्ञाओं के पालन से किसी ने कभी उद्धार प्राप्त नहीं किया है। दानियल अपने को और अपने लोगों को परमेश्वर की दया पर निर्भर कर रहा था। कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। यह यरूशलेम है जहां परमेश्वर का राज्य होगा। इसे हम देख सकते हैं यशाया 2:1-2 में। हम आगे पढ़ेंगे दानियल 9:21 में। लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। लिखा है, वह पुरुष जिब्राइल। जिब्राइल एक स्वर्गदूत था और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसके आने का समय वह था जब यरूशलेम में संध्या समय अन्न बलि चढ़ाई जाती थी, लगभग दोपहर के बाद 3:00। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी है। जिब्राइल द्वारा दी गई यह भविष्यवाणी अंत समय की चर्चा को बहुत ही महान महत्व प्रदान करती है। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 9:22-23। लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। मेरे प्रियो, यहां ध्यान रखें कि दानियल को प्रार्थना का तत्कालिक उत्तर मिल गया। डॉक्टर गैबलिन का कहना है कि दानियल की प्रार्थना 3 मिनट की थी और उसे 3 मिनट में ही उत्तर मिल गया। जिब्राइल आ पहुंचा। अतः डॉक्टर गैबलिन आगे कहते हैं कि स्वर्ग से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में जिब्राइल को 3 मिनट लगे थे। यह भी हो सकता है कि दानियल आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, इसलिए जिब्राइल को 2 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। 65:24 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि दानियल स्वर्ग में अति प्रिय ठहरा था। यह एक अति महान बात है। एक विश्वासी को परमेश्वर प्रभु यीशु में देखता है। इफिसियों के पत्र 1:6 के अनुसार हम उस प्रिय में ग्रहण किए जाते हैं। अतः एक विश्वासी प्रभु यीशु में होने के कारण स्वर्ग में प्रिय ठहरता है। मेरे मित्रों, यह क्या ही धन्य बात है कि हम प्रभु यीशु में होकर के एक प्रिय ठहरने वाले लोग हैं। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही स्वर्ग में आप एक प्रिय ठहरने वाले विश्वासी हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए भी मौका है कि आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, जैसा कि हम दानियल के जीवन में देख रहे हैं। तब आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसा, जीवन अपना निसा, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु।